गत वर्ष से रंगा राव को एक भयंकर रोग हो गया था। किसी भी समय नींद नहीं आती थी, रात भर जोर की खांसी उठती। डॉक्टर लोग विमानों पर सवार होकर आते और दवा देते, तत्काल कुछ आराम होता, परंतु तुरंत ही डॉक्टर के साथ साथ उस दवा का प्रभाव भी आकाश में उड़ जाता। शास्त्र चिकित्सा की जाती तो अब तक कुछ न कुछ नतीजा निकल चुका होता। इस प्रकार दीर्घ रोगों पर अंग्रेजी दवाओं का कोई प्रभाव नहीं हुआ करता, परंतु धनवानों को देशी वैद्य पसंद नहीं। डॉक्टरों के बिल चढ़ रहे थे। रंगा राव नागेश्वर राव को पैसे के लिए तंग कर रहे थे। नागेश्वर राव ने पहले मालगुजारी वसूल की, फिर कर्ज ले आया और अंत में घुड़दौड़ के घोड़ों और मकानों को बेचकर रुपये लाने लगा। धीरे धीरे रंगा राव का खाट से उठना मुश्किल हो गया। दीवान जी लगभग 25 लाख रुपये कर्ज ला चुके थे। एक दिन रंगा राव बहुत अस्वस्थ हुए, बचने की आशा न रही। डॉक्टरों पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। उनके आने जाने के खर्च में ही हजारों रुपए लग रहे थे। रोगी की परिचर्या के लिए 10 अंग्रेजी नर्सों को नियुक्त किया गया। सभी नर्सें जमींदार से काफ़ी पैसा आंट रही थीं। हरप्पा की आयु 19 बरस से अधिक हो चली थी। वह नाग की भांति छरहरा था। उसके मुँह पर राजाओं का तेज दिनों दिन निखरता जा रहा था। एक बार वह अपने पिता को देखने गया। कमरा गोरी नर्सों से भरा पड़ा था। हरप्पा ने सफ़ेद रेशमी की जरी की पगड़ी पहन रखी थी, गले में रत्नहार था, शरीर पर खादी का कुर्ता और जरी की कोर वाली पोंदूर की धोती थी। उसे देखते ही सारी परिचारिकाएं सिटपिटाकर दूर हट गईं। अस्वस्थ होने के कारण रंगाराव अपने बेटे से कुछ अधिक प्रेम करने लगे थे। हरप्पा आकर पिता के चरणों के पास सोफे पर बैठ गया। उसने पूछा, स्वास्थ्य कैसा है? पिता ने दृष्टि मात्र से अपना प्रेम और दीन दशा प्रकट की। हरप्पा आधे घंटे तक बैठा रहा, फिर प्रणाम करके चला गया। लौटते समय हरप्पा को गोरी नर्सों ने देखा। 1000 सम्राट भी ऐसी बाकी चाल नहीं चल सकते। नर्सें सोचने लगीं, ओहो, ऐसे होते हैं भारत के जमींदार। पूर्व काल के संभवतः यहाँ के नरेश ऐसे ही होते थे। हरप्पा की भुजाएं उन्हें अत्यंत कठोर दिखाई दीं, मानो लोहे की बनी हो। लोग इस लड़के को दुर्बल क्यों समझते होंगे भला? हरप्पा धीरे धीरे कोठी के प्रशासन की बागडोर संभालने लगा, सभी मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। एक बार दौरा करने निकला तो 10 थानों का निरीक्षण कराया। उसने जमींदारी के गांव, उनसे वसूल होने वाली मालगुजारी, वसूली का ढंग, कारकुन, उनका वेतन आदि सही बातों की जानकारी प्राप्त की। आज तक किसी जमींदार ने थाने का निरीक्षण नहीं किया था, हिसाब की छानबीन नहीं की थी। लोग कहने लगे, हरप्पा जमींदारी को परवान चढ़ाएगा। कहीं कोई त्रुटि दिखाई देती तो तुरंत नागेश्वर राव को पत्र लिखता। नागेश्वर राव ने पहले 2-3 पत्रों का उत्तर नहीं दिया, परंतु हरप्पा ने किसी और कर्मचारी द्वारा उन त्रुटियों को ठीक करवाया। जिन कर्मचारियों के कारण त्रुटियां हुई थी उनके वेतन में कटौती की गई। नागेश्वर राव तुरंत ही ताड़ गया कि अब मनमानी नहीं चलेगी। तब से वह भी हरप्पा की इच्छानुसार चलने लगा। उसने रंगा राव से जाकर कहा कि हरप्पा सारा शासन स्वयं चला रहे हैं। रंगा राव चुप हो गए, सोचने लगे, मैं तो बिस्तर से उठ नहीं सकता। आज बेटा जमींदारी संभाल रहा है, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। कुछ गाँवों में मालगुजारी वसूल नहीं हुई थी। नागेश्वर राव ने गाँव वालों पर दावे किए थे। इस मुकदमेबाजी का खर्चा मालगुजारी से अधिक ही हुआ। हरप्पा ने हिसाब देखकर नागेश्वर राव को लिखा, किसानों से मालगुजारी सीधे ढंग से वसूल करनी चाहिए। दावे करके कोर्ट कचहरी के खर्च में इस प्रकार पैसा बर्बाद करना उचित नहीं। हर मामले में आय और व्यय का पहले ही अनुमान कर लेना चाहिए। दीवान जी को धीरे धीरे अपने हाथ से अधिकार खिसकता दिखा। स्वयं त्यागपत्र देकर चले जाना है उन्हें अच्छा लगा, परंतु अभी रंगा राव जीवित थे, इसलिए नागेश्वर राव के मन में आस बनी रही। केसरी पट्टम नाम के एक गांव में जमींदार की निजी जमीन में 2 बबूल के पेड़ थे। बगल वाली जमीन के मालिक ने उन पेड़ों को काटकर अपने कोठे में रख लिया। दीवान जी ने उस किसान के विरुद्ध कार्यवाही की। बबूल के पेड़ों का मूल्य 10 रुपये से अधिक न था, परंतु कार्यवाही में 50 रुपये से अधिक खर्च हुए। इस पर हरप्पा ने दीवान जी को आदेश दिया, आपने फिर यह गलत कार्यवाही की है। किसान ने 2 बबूल के पेड़ काट लिए तो जमींदार का क्या नुकसान हुआ? गरीब किसान को थोड़ी सी लकड़ी मिल गई, पर आपने जो 50 रुपये खर्च किए सो तो बेकार की पढ़ाई वाले वकीलों और कचहरियों में बह गए। मुझे सूचना दिए बिना आगे आप ऐसी कोई कार्यवाही न करें। नागेश्वर राव सोचने लगा, इस पत्र में हरप्पा ने आजकल की पढ़ाई पर भी ताने कसे हैं। मेरे कॉलेज की निंदा करना चाहता है क्या? नौकरी के साथ साथ शायद मुझे कॉलेज को भी तिलांजलि देनी पड़े। हरप्पा ने पता लगाया कि विजयवाड़ा में जो वकील सुबन्नापेठ की जमींदारी का काम देखता था वह नागेश्वर राव का मित्र अथवा रिश्तेदार था। हरप्पा सोचने लगा, देखने में नागेश्वर राव बड़ा दयानतदार लगता है, परंतु जमींदारी का पैसा खाने में वह किसी से कम नहीं। उसकी सारी दयानतदारी इसी बात से नज़र आती है कि जिन्हें वह नहीं चाहता उन्हें नौकरी नहीं देता, उनकी सहायता नहीं करता। उसे केशव जी धर्म रूपी नकाब मिला है, जिसे ओढ़ कर वह बेईमानी के कोढ़ को छिपा रहा है। कॉलेज के अध्यापकों को पता चला कि हरप्पा स्वयं जमींदारी संभालने लगा है, तो वे उसे अपनी राम कहानियाँ सुनाने लगे। कोई भी हरप्पा से स्वयं जाकर बातें कर सकता था। अध्यापकों ने हरप्पा को कॉलेज की शिक्षा प्रणाली का ब्यौरा सुनाया। कई विद्यार्थी नागेश्वर के जासूस बने हुए थे। उनका काम था अध्यापकों की शिकायत करना। ईसाई धर्म के विरुद्ध केशव जी के धर्म अथवा ब्रह्म समाज के विरुद्ध एक अक्षर भी कहना निषिद्ध था, परंतु प्रार्थना मंदिर में हिंदू धर्म की भरपूर निंदा की जाती थी। कोई हिंदू धर्म पर गर्व करने वाला यदि उस निंदा का उत्तर देता तो उसे अन्य धर्मों का निंदक समझा जाता था। अध्यापकों का विद्यार्थियों से मिलजुल कर रहना निषिद्ध था। कक्षाओं में हंसना या विनोद करना निषिद्ध था। अध्यापकों में सजीवता के लक्षणों का रहना निषिद्ध था। कॉलेज में केवल मृत कलेवरों को आना चाहिए। आधुनिक सभ्यता की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आज के शिक्षा प्रणाली में सर्वत्र उत्कृष्टता ही स्वीकार करनी चाहिए। मान लो कि उसमें उत्कृष्टता है, तथापि यदि कोई अपनी राय प्रकट करना चाहे तो क्या उसकी शामत आएगी? इस देश में कहा जाता है कि बातचीत की स्वतंत्रता है। देश की बात राम जाने, इन छोटी छोटी संस्थाओं में भी वह स्वतंत्रता नहीं। विचार की स्वतंत्रता और बातचीत की स्वतंत्रता केवल बड़े बड़े अधिकारियों तक सीमित है, सामान्य जनों के लिए वह कतई नहीं है। एक दिन हरप्पा ने रंगाराव से कहा, आपको देशी औषधियों का सेवन करना चाहिए। 4-5 बरस तक लगातार सेवन करेंगे तो अवश्य स्वास्थ्य सुधरेगा। रंगाराव ने कोई उत्तर न दिया। हरप्पा के कहने पर धर्माराव एक बड़े वैद्य को ले आया। उसका नाम था राजशेखर शास्त्री। राजशेखर शास्त्री, हरप्पा, रंगाराव और धर्माराव बैठकर चर्चा करने लगे। रंगाराव, क्यों शास्त्री जी, आपके पास अच्छी औषधियाँ हैं? सुनता हूँ आजकल आप लोग ठीक विधि से औषधियाँ तैयार नहीं करते। शास्त्री, क्यों नहीं तैयार करते? यदि महाराज पैसे के मामले में आनाकानी न करें तो अच्छी से अच्छी औषधियाँ शास्त्रीय ढंग से तैयार करूँगा और उन औषधियों के गुण की जिम्मेदारी भी लूँगा। महाराज, यदि राजा लोग धर्म का पालन करेंगे तो संसार में कोई दोष नहीं रहेगा। पिछले दिनों आप ही की जमींदारी में एक घटना घटी थी। एक गरीब ब्राह्मण था जो चूल्हे की लकड़ी बेचकर जीवन यापन करता था। वह लकड़ी की गठरी सिर पर लिए मूत्र विसर्जन किया करता। आपके परदादा हरिहर नायडू ने कोठी पर उसे देख लिया और बुलाकर फटकारा कि तुम कैसे ब्राह्मण हो जो खड़े खड़े मूत्र विसर्जन करते हो, मलेच्छों से भी गए बीते हो। ब्राह्मण बोला, महाराज मैं गरीब हूँ, लकड़ी की गठरी सिर से उतारूंगा तो फिर उसे उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। महाराज मुझे पेट भर खाना देंगे तो देखते देखते मैं उत्तम ब्राह्मण बन जाऊँगा। जमींदार उस ब्राह्मण के परिवार को पालने पोसने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने कोठी पर से देखा, तालाब के किनारे एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा है। कड़ी धूप थी। ब्राह्मण ने अपना दुपट्टा ऊपर उछाला। दुपट्टे के चारों छोर हवा में फैले और छत की भांति ब्राह्मण को छाया देने लगे। यह देखकर जमींदार ने उस ब्राह्मण को बुला लाने के लिए एक नौकर भेजा। ब्राह्मण ने आने से इनकार कर दिया। जमींदार स्वयं ब्राह्मण के पास जा पहुंचे, देखा कि यह वही ब्राह्मण है जिसके परिवार का वे पालन पोषण कर रहे हैं। जमींदार बोले, क्यों जी, तुम्हारे बीवी बच्चों को मैं पाल रहा हूँ, तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो पर मेरे बुलाने पर तुम नहीं आते। ब्राह्मण बोला, मेरी तपस्या में 1/4 भाग आपको मिल ही रहा है, फिर मुझ पर आपका अधिकार ही क्या है? राजा का आदर प्राप्त हो तो ऐसी कोई विद्या नहीं जो विकसित न हो। अंग्रेजी डॉक्टरों को ही लीजिए, वे रोग का प्रकार नहीं जानते, नाड़ी परीक्षा नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, बाहरी चिन्हों को देखकर दवा देते हैं। सचमुच दवा शरीर के तत्व के अनुसार दी जानी चाहिए। वात, पित्त और श्लेष्म, इनमें से किसी एक गुण के अतिरेक से शरीर में रोग उत्पन्न होता है। रोग के मूल का नाश करो तो रोग का नाश हो जाता है। रोग मानव वृक्ष का तना होता है। जड़ें ज्यों की त्यों रखकर टहनियों को काट देने से कटे हुए तने में फिर कोपलें फूट आती हैं। अंग्रेजी डॉक्टरी का यही हाल है। फिर भी राजाश्रय पाकर आज अंग्रेजी चिकित्सा परवान चढ़ रही है। ऐसी स्थिति में यदि राज्य की ओर से प्रोत्साहन मिले तो साक्षात विष्णु के अवतार धन्वंतरी की वैद्य विद्या और चरक महर्षि के वैद्य सिद्धांत क्यों व्यर्थ होंगे? अपनी पतिव्रता पत्नी अन्य देशी स्त्रियों के समान भी सेवा नहीं करेंगी। राजशेखर शास्त्री को रंगाराव का पाश्चात्य स्त्री से विवाह करना ज्ञात नहीं था। शास्त्री ने बातों बातों में बहुत कुछ कह डाला। रंगाराव बिगड़ गए। हरप्पा ने सिर झुका लिया। धर्माराव कुछ सिपटा गया। हरप्पा बोला, शास्त्री जी आप कल पधारिए। तीनों उठकर चले गए। हरप्पा ने धर्माराव से कहा कि कल शास्त्री जी को आने की आवश्यकता नहीं। शास्त्री जी चले गए। 6 महीने बीत गए। रोग ज्यों का त्यों बना रहा। एक दिन हरप्पा रेल में मद्रास जा रहा था। किसी मामले में उसे मद्रास जाना पड़ा था। पहले दर्जे के डिब्बे में वह बर्थ पर सो रहा था। उसी डिब्बे में दो और व्यक्ति बातें कर रहे थे। हरप्पा मुख पर से दुपट्टा हटाए बिना ही उनकी बातें सुन रहा था। एक व्यक्ति कह रहा था, हाँ जी हमारा क्या है, हम वैद्य हैं। आपके पास धन है तो हमारे पास विद्या है। विद्यापुर के जमींदार आंध्र प्रांत में मानधाता की तरह संस्थाओं का पोषण करते हैं। पिछले दिनों तक वे समुद्र तट पर 2 कोस लंबा वन लगाकर औषधियाँ उपजाते थे। उनके आस्थान वैद्य बड़े प्रतिभाशाली थे। एक बार पिद्दापुर के राजा ने वैद्यराज को अपने समधि के पास भेजा। वैद्यराज सोने की पैंजनी पांव में पहनकर वहां पहुंचे और बीमार जमींदार की सेज पर अपना पांव धरकर उनकी नाड़ी देखने के लिए हाथ बढ़ाया। बीमार जमींदार ने वैद्यराज का पांव अपनी सेज पर देखा और मारे गुस्से के हाथ खींच लिया। वैद्यराज वापस लौट गए। रोग ज्यों का त्यों बना रहा। जमींदार ने पूछा, हमारे वैद्यराज के आने पर ही आपकी अवस्था ज्यों की त्यों बनी रही? समधि ने कहा, आपके वैद्यराज ने पैंजनी पहनकर अपना पांव मेरे बिस्तर पर रखा था, मैंने उन्हें मना किया। जमींदार साहब बोले, हमारे वैद्यराज धन्वंतरी के अवतार हैं, साक्षात विष्णु भगवान हैं। हम तो निरे मानव हैं, इसीलिए आपकी अस्वस्थता कम नहीं हुई। वैद्यराज को फिर बुलाया गया। उन्होंने फिर पैंजनी पहनकर अपना पांव जमींदार के बिस्तर पर टिका दिया। नाड़ी देखकर बोले, चिकित्सा में 6 महीने का विलंब हुआ है, अतएव रोग के कम होने में 5 दिन का विलंब होगा। उनके कथनानुसार 6 दिन के विलंब से रोग मुक्ति हुई। राजा को चाहिए कि जिस विद्या का जितना महत्व होता है उतना उसे दे, धन के घमंड में विद्या का अपमान न करे। हरप्पा ने दुपट्टा हटाकर देखा, राजशेखर शास्त्री बोल रहे थे। हरप्पा को देखकर शास्त्री जी ने पूछा, आप हैं कुंवर जी, पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? हरप्पा बोला, शास्त्री जी आप हमें क्षमा करें, मैं मद्रास से परसों लौट आऊँगा, वहाँ हम अपना बंगला बेच रहे हैं, मेरे लौटते ही आप कोठी पर पधारें। शास्त्री जी ने कहा, अच्छा अच्छा। 4 दिन के बाद भी शास्त्री जी नहीं आए। हरप्पा रंगाराव से बोला, उस दिन शास्त्री जी ने जो बात कही थी वह अनजाने में यूं ही कही थी, वे क्षमा चाहते हैं। रंगाराव मान गए। हरप्पा ने कहा, उन्हीं से आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होगा, आप उन्हीं की दवा का सेवन करें तो अच्छा है। रोग पीड़ा से विवश होकर रंगाराव ने यह प्रस्ताव मान लिया। धर्माराव शास्त्री जी को फिर ले आया। शास्त्री जी ने इलाज शुरू किया। वे कहते कि अमुक दवा दे रहा हूँ, कल सवेरे तक इसका अमुक प्रभाव होगा। ठीक उसी तरह औषधि अपना काम करती। हरप्पा ने पूछा, पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होने में कितना समय लगेगा? शास्त्री जी बोले, इस रोग को प्रारंभ हुए 16 वर्ष हो चुके हैं, 3 बरस से तो बहुत बढ़ गया है, 2 बरस तक औषधि लेनी होगी। उनका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नागेश्वर राव ने इस्तीफा दे दिया। हर छोटे बड़े मामले में हरप्पा का हस्तक्षेप उसे पसंद न था। हरप्पा ने धर्माराव से कहा, मैं आपको दीवान बनाऊंगा। धर्माराव बोला, मैं तो बचपन से ही आपका दीवान हूँ, मेरे पूर्वज आपके पूर्वजों के मंत्री रहते आए हैं, उन्होंने बिना वेतन और भत्ते के आपकी सेवा की है, मैं केवल वेतन बिना सेवा कर रहा हूँ। भत्ता 11 बरस से आप मुझे देते आ रहे हैं, मैं आपसे फूटी कौड़ी भी वेतन के रूप में रह लूँगा। हरप्पा की आंखों में स्नेह, कृतज्ञता अथवा धर्माराव की उदारता के प्रति प्रशंसा का अनोखा भाव झलक गया। हरप्पा को अब अपनी प्रभुता का भान हुआ। वह सोचने लगा, क्या अब मैं माँ जी का श्राद्ध कर्म कर सकता हूँ, वेणुगोपाल स्वामी के कल्याणोत्सव का आयोजन कर सकता हूँ? उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। इतने में आषाढ़ का महीना आया। स्वामी के कल्याणोत्सव का आयोजन वैशाख पूर्णिमा को होने वाला था, अर्थात 10 महीने और रह गए थे। श्राद्ध कर्म भी उसी समय निश्चित हुए।